अयांश नीचे पहुंचा तो राधे बोला, नाश्ता लग गया है। विनीत सोफे से उठते हुए बोला, चल आ जा अयांश, पेट पूजा करते फिर ही कुछ और करेंगे। अयांश ने हाँ में सिर हिलाया और दिनकर जी की ओर देखते हुए बोला, दादू आइए। दिनकर जी बिना अयांश की ओर देखे बोले, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, राधे इनको खाना देकर मेरी दवा ला कर दे, वो भी जल्द ले लूँ। अयांश हैरानी से बोला, आर यू ओके दादू? दिनकर जी ने एक नज़र देखा, फिर नज़रें घुमाकर बोले, हाँ ठीक हूँ, मैं वक्त से खा भी रहा हूँ, आराम भी कर रहा हूँ और दवा भी ले रहा हूँ, अपना ख्याल अच्छे से रख रहा हूँ। तुझे कोई वजह नहीं दूंगा जो तुम मेरा आरवी से मिलने पर रोक लगा सको। ये सुनते ही विनीत मन मन मुस्कुरा दिया, पर तभी अपनी हंसी रोक अयांश की बाँह पकड़ डाइनिंग टेबल की ओर ले जाते हुए बोला, रहने दो भाई, दादू नहीं दिनकर मेहरा के अवतार में आ चुके हैं, जहाँ अयांश मेहरा की भी नहीं चलने वाली। अयांश थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, कैसे बात कर रहे हो, देखा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब उस आरवी की बच्ची की वजह से हो रहा है, ठीक होने दो फिर बताता हूँ उसे। हाँ बता देना, और दादू के लिए सच में वो बच्ची है, पर तू शांत रहे, पता चले उस बच्ची के चक्कर में बच्चू हम घर के बाहर मिले। दिनकर मेहरा खतरनाक हैं, भूलो मत, तुम पोते हो तो वो दादू हैं, तो मेरे शेर सवा शेर से पंगे मत लो अभी। विनीत ने अयांश को चेयर पर बिठाया और खुद भी उसकी पास वाली चेयर पर बैठ गया। लाओ राधे जल्दी खाना दो। थोड़ी देर बाद जब आरवी उठी तो देखा दिनकर जी उसके बेड के पास चेयर पर बैठे थे। आरवी अपनी झपकती पलकों और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उनकी ओर देखते हुए बोली, आप? और उठने की कोशिश करने लगी तो दिनकर जी ने रोक दिया, लेटी रहिए आप बेटा, और आरवी का सर सहलाते हुए बोले, आप ठीक है ना बेटा? आरवी ने हाँ में पलके झपका दी। और आप? दिनकर जी ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बेटा हमें माफ़ कर दो, अगर हम ना जाने देते आपको यहाँ से तो आपकी ये हालत नहीं होती। ये सुन आरवी ने ना में सिर हिलाया, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आप खुद को ब्लेम ना करें प्लीज़, आपकी वजह से थोड़ी कुछ हुआ है, हम ठीक हैं, परेशान मत होइए। और हाँ, जाते नहीं तो सच सामने कैसे आता, कैसे पता लगता, जिस शख्स के साथ जा रही हूँ वो गलत है, उसने सबके साथ धोखा किया है, ये भी ना जान पाते हैं ना? आप ठीक है ना? मन पर कोई बात कोई बोझ मत रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब ठीक हो जाएगा, कहते हुए दिनकर जी आरवी का सिर सहलाया। इस पर आरवी कुछ ना बोली, बस खामोशी से उनको देखती रही। क्या बात है बेटा? सोच रही हूँ क्या वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर जो देख रही हूँ हो रहा है उसमें क्या अच्छा है, बताइए ना। फिलहाल तो बेटा मैं भी नहीं जानता अच्छा बुरा का, पर उम्मीद है सही वक्त आने पर हम सब जान जाएंगे। इतना तो मानती हो ना तुम, गलत हाथों में जाने से बच गई और ये अच्छी बात है ना? आरवी ने कहते हुए पलकें झपकाई। एक बात और, मेरा अंशु बेशक तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, वजह हम सब जानना चाहते हैं, जो कभी ना कभी पता चल जाएगी, पर वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा जो सही ना हो। ये सुनते ही आरवी दूसरी तरफ देखने लगी, आपके पोते हैं वो तो आप उनको गलत थोड़ी कहेंगे, मुझे उनमें अभी तक कुछ नजर नहीं आया जो मेरे लिए सही हो। दिनकर जी आरवी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, तुझे बचा कर लाया ये गलत है क्या उसके हाथों? आरवी, इसमें भी उनकी कोई मंशा हो सकती है, वैसे भी वो अपनी मर्जी और फायदे का ही काम करते हैं। ये सुन दिनकर जी खामोश हो गए तो आरवी बोली, अब आप चुप क्यों हो गए? अच्छा ठीक है, आपके पोते के बारे में हम बात नहीं करते हैं, मैं नहीं चाहती उनकी वजह से हमारे बीच चुप्पी रहे, आपके लाडले हैं वो, थोड़ी उनकी बुराई सुनेंगे, मुस्कुराते हुए, बात नहीं करेंगे और कर भी रही हो, चलो छोड़ो, चिंता मत करो, जल्द ठीक हो जाओ और सब ठीक हो जाएगा, हल्का सा मुस्कुराते हुए। आपने खाना खाया, दवा ली? आरवी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। आरवी बेटा, हम आपसे माफी ही नहीं आपको धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, आपने हमारे पोते पर आई मुसीबत खुद पर ले ली, उसकी जान बचाई, धन्यवाद बेटा। ना माफी चाहिए और ना ही धन्यवाद, हिसाब बराबर समझिए, आपके पोते ने हमें सक्षम नाम की मुसीबत से बचाया तो हमने भी हाथों हाथ उन्हें भी चोट लगने से बचा लिया, और देखिए उन्होंने फिर हमारी जान बचाई, खुद की ओर इशारा करते हुए, यकीन नहीं होता हमारी जान के दुश्मन मिस्टर मेहरा हमें बचाने आए थे। अच्छा तो यकीन कर लो, ये सच है ना, जैसे तुमने बचाव किया उसने भी किया, और सच में इसके पीछे कोई मंशा कोई अपना फायदा नहीं था, सच में वो चाहते हैं आप ठीक हो जाओ। अच्छा चलो आप कहते हैं तो मान लेते हैं, वरना वो कब क्या करते हैं, वजह क्या होती है कोई नहीं बता सकता है, मदद भी एहसान लगे। ये सुन दिनकर जी ने अपना सिर पकड़ लिया, आप दोनों से कुछ कहना ना कहना बराबर है, सोचना समझना करना सब मन का है दोनों के। आरवी, अच्छा सॉरी, अब आप चुप मत हो जाना, वरना ये इतना बड़ा घर जिसमें रहने वाले चार लोग, आप ही बात ना करेंगे हमसे तो हम बोर हो जाएंगे ऐसे पड़े पड़े, पता नहीं कब तक पड़े रहना होगा। उठो तो सर घूमने लगता है। तो उठना ही क्यों है आपको, आराम करो, घाव ताजा है, अभी भरने दो बेटा, हो जाएगा जल्द ठीक। ये घाव तो भर जाएंगे, मन पर लगे हैं वो भी क्या भर जाते हैं जल्द, बताइए ना, आरवी आंखों में नमी लाते हुए बोली। वक्त हर घाव की दवा होता है बेटा, हर तकलीफ हर दर्द की याद मिट जाती है, थोड़ा वक्त दो खुद को। और हाँ एक बात याद रखो, जिन्होंने धोखा दिया है उनको इतनी जगह मत दो अपनी जिंदगी में कि खुद को परेशानी हो जीने में। हंसते मुस्कुराते अच्छी लगती हो, उदास नहीं, इसलिए जैसी हो वैसी रहो। ऐसा कुछ भी अपने पर हावी ना होने दो जो आपको खुश रहने के बजाय दुखी करे, समझ रही है ना आप। दिनकर जी ने एक हाथ से बड़े ही प्यार से आरवी का गाल छुआ। आरवी उनकी ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला देती है। आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल दादी माँ जैसे बातें करते हैं, बस जेंडर अलग है बाकी सेम टू सेम, थैंक यू। ये सुन दिनकर जी मुस्कुरा दिए और झुककर आरवी का माथा चूम बोले, आप बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल। तभी आरवी फट से बोली, अपने पोते से कंपेयर मत करना, हम उनके जैसे नहीं हैं और वो प्यारे तो बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें प्यारा कहना मतलब हम प्यारे लोगों को बेइज्जत करना होगा, मुंह बनाते हुए। ये सुन दिनकर जी हंस पड़े, आप सच में पागल हो बेटा, पर अच्छा लगा देखकर कि चोट खाकर भी हिम्मत वैसी ही है, शेरनी जैसी, शाबाश, गाल थपथपाते हुए। ये सुन आरवी भी मुस्कुरा दी, डोंट वरी, हम खुद को संभाल सकते हैं। तभी राधे नर्स के साथ आरवी के लिए जूस और फ्रूट ले आया। चलिए मैम कुछ खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है, कहती हुई नर्स आरवी के पास आई और आरवी को सहारा देकर बेड से सटाकर बिठाया। राधे ट्रे सामने रखते हुए बोला, जल्दी से खाइए, दवा लीजिए और स्वस्थ हो जाइए बिल्कुल पहले जैसे, मुस्कुराते हुए। आरवी जूस फ्रूट की ओर देखते हुए बोली, ये खाएंगे हम। दिनकर जी, हाँ यही खाओगी, डॉक्टर ने यही बोला है, और नर्स को आरवी को खिलाने का इशारा किया। नर्स आरवी को फ्रूट खिलाने लगी। आरवी को खाते खाते मुंह बनाते देख राधे बोला, अभी ये खाइए, फिर आपको मैगी पास्ता वो सब खिलाएंगे, है ना मालिक। दिनकर जी, हाँ और साथ में हम सब भी खाएंगे, आरवी खुश होते हुए बोली। सच्ची? राधे और दिनकर जी एक साथ बोले। मुच्ची, अयांश देर रात घर लौटा तो राधे बोला, अयांश बाबा खाना। अयांश मना करते हुए बोला, नहीं भूख नहीं। राधे, कुछ और लेंगे आप? नहीं दादू, वो सो गए हैं अयांश बाबा। ठीक है तुम भी जाओ। अच्छा सुनो, उसने कुछ खाया? उसने? किसने? दादू की नई चहेती ने, अयांश राधे को घूरते हुए बोला। जी खाया थोड़ा सा, जो डॉक्टर ने कहा था, राधे इतना बोला और अयांश ऊपर चला गया।
अयांश अपने कमरे में जाने लगा कि उसके कदम रुक गए और वो कुछ सोच आरवी के कमरे की ओर बढ़ गया। आरवी बेड पर लेटी सीलिंग की ओर देख रही थी, तभी नर्स उससे बोली, मैम आप ले लीजिए ना मेडिसिन, ये पेन किलर के साथ स्लीपिंग पिल्स भी हैं, आपको अच्छी नींद आएगी, रेस्ट जरूरी है आपके लिए। तो मैं कौन से पत्थर तोड़ रही हूँ, रेस्ट ही कर रही हूँ, बेड से हिलने तक तो दे नहीं रही आप, सिर्फ सिर के चोट लगी है और थोड़ी सी हाथ के, और आप रिएक्ट ऐसे कर रही हैं जैसे मेरी 206 की 206 हड्डियाँ टूट गई हों। दिन भर तो सुला कर रखा, इंसान हूँ, कुंभकर्ण नहीं मैं जो सोती रहूँ, मैं सोकर थक गई और मुझे भी पता है, इन दवा का असर ले ली तो सुबह ही जाग आऊँगी और मुझे अभी नहीं सोना है, तो प्लीज़ आप बार बार पूछना बंद कीजिए, आप जाकर सो जाइए, आप ही रेस्ट कीजिए, पता चले मेरा ख्याल रखते रखते खुद बीमार पड़ गई।
नर्स, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और ठीक हूँ मैम, और आपको पेन हो रहा है ना, आपको ये दवा लेनी होगी, मान जाइए ना प्लीज़, आपने बोला था बाद में लूँगी, देखिए कितनी देर हो गई।